अध्याय प्रथम, मूल्य का अर्थ, प्रकृति तथा मूल्यों का निर्धारण। दर्शन का तीसरा विभाग मूल्य शास्त्र है। मूल्य शास्त्र में तीन विषय आते हैं, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, तर्क शास्त्र। नीति शास्त्र में अच्छा खराब, शुभ अशुभ, कौन से कार्य अच्छे हैं, कौन से खराब, हमें क्या करना चाहिए, यह देखा जाता है। सौंदर्य शास्त्र के विषय है, सौंदर्य क्या है, इसका मानदंड क्या है, सुंदर असुंदर आदि, तथा तर्कशास्त्र में तार्किक चिंतन का स्वरूप क्या है, तार्किक विधियां, सहज बोध तथा अनुमान क्या है आदि विषय आते हैं। दर्शन के इन क्षेत्रों में से मूल्य शास्त्र का विषय क्षेत्र मानव जगत में अपनी व्यावहारिक उपादेयता के कारण सार्थक है। मनुष्य के मन में प्रायः ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्या अच्छा और क्या इष्ट, तथा जीवन जीने का अच्छा और उचित तरीका क्या है। मूल्य शास्त्र में इन्हीं तीन विषयों के बारे में बात होती है, इसे मानव अस्तित्व से पृथक नहीं कर सकते। डॉक्टर राम सकल पांडे और डॉक्टर के एस मिश्र ने लिखा है, यदि हम भारत माता को बचाना चाहते हैं, भारत माता को खंड खंड होने से बचाना चाहते हैं, भारतीय समाज को एकजुट रखना चाहते हैं, तो हमें अपने विनाश यात्रा के मध्य क्षण भर रुककर सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यह सोच, यह चिंतन मूल्यों का चिंतन है। आज हमारे देश के नेताओं ने भारतीय मूल्यों को नष्ट कर दिया या देना चाहा है। शिक्षकों का धर्म है कि वे इन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करने में लग जाएं। मूल्य का अर्थ, मूल्य का क्या अर्थ है, इसे समाज विज्ञान और दर्शन दोनों ही ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं कर सके हैं। इतना स्पष्ट है कि मूल्य मानव अस्तित्व की किसी महत्वपूर्ण चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखने से उसके अनुभव बढ़ते हैं। सीखते सीखते जब वह परिपक्व हो जाता है तो उसे ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो अनुभव उसके व्यवहार को मार्गदर्शन कराते हैं अथवा उसे निर्देशन देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए अथवा उसके लिए क्या आदर्श है। इन आदर्शों को ही मूल्य कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि मूल्य किसी वस्तु या स्थिति का वह गुण है जो समालोचना या वरीयता प्रकट करती है। यह एक आदर्श या इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति जीता है तथा आजीवन प्रयास करता है। यदि हम मूल्य को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वास्तविकता और मूल्य में जो अंतर है उसे जानना होगा, जैसे क्या है और क्या होना चाहिए। जैसे वास्तविकता या फैक्ट यही है कि न्यूक्लियर बम असंख्य लोगों का विनाश कर सकता है, हम जब यह कहते हैं तो इसका प्रयोग करना गलत है, क्योंकि यह इतना बड़ा विनाश करता है तो यही मूल्य है। अर्थात विनाश करना अच्छी बात नहीं है, विनाश नहीं करना चाहिए। शब्दकोश के अनुसार मूल्य का अर्थ, अंतर्निहित इच्छाई या अच्छाइयों अथवा कल्याण का भाव ही मूल्य है। मूल्य की शाब्दिक व्युत्पत्ति, मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू का समानार्थी है जो लैटिन भाषा के वैलियर से बना है। इसका अर्थ है योग्यता या महत्व। मनुष्य के लिए संस्कृत में इष्ट शब्द है जिसका अर्थ है वह जो इच्छित है अथवा वह जो इच्छाओं आवश्यकताओं की संतुष्टि करे, वही मूल्य है। मूल्य वह है जो इच्छा की संतुष्टि करे। मूल्य की परिभाषाएं, पार्क के अनुसार वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। स्टैनली के अनुसार मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। मूल्य सदैव अच्छाई का समानार्थी है, जो कुछ अच्छा है मनुष्य उसी को धारण करता है तथा उसे मूल्य देता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह देश और काल के अनुसार अपनी इच्छाओं के अनुसार किन मूल्यों को अधिक महत्व देता है। जॉर्ज गीजर के अनुसार मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनाव का परिणाम है। मनुष्य में बहुत सी इच्छाएं बहुत बलवान होती हैं। उदाहरण के लिए पैसा, भोजन, सम्मान, शोहरत, सुरक्षा, सुख, शांति आदि, मनुष्य इनको तो मूल्य देता है, लेकिन कुछ दशाएं ऐसी हैं जिनको वह मूल्य नहीं देता है, वे जिनके लिए अमूल्य होती हैं, जैसे कष्ट, पीड़ा, यातना, दर्द, भूख, गरीबी, अज्ञानता आदि। इन सभी अनिच्छित बातों को वह अपमूल्य मानता है, वे उसकी दृष्टि से अमूल्य हैं। मनुष्य की इच्छाओं का संसार बहुत ही व्यापक या विस्तृत है। कुछ इच्छाएं व्यावहारिक, वास्तविक तथा स्थूल होती हैं और कुछ सार्वभौमिक शाश्वत, पराभौतिक अमूर्त निराकार होती हैं, जैसे घर, नौकरी, विवाह, तरक्की, सामाजिक न्याय, मनुष्य के अधिकार, शांति, धर्म, निरपेक्षता, समानता तक फैली है। कौन सी इच्छा अच्छी है, कौन सी बुरी, कौन सी जरूरी है और कौन सी नहीं, वह कुछ इच्छाओं के को महत्व देता है, कुछ को नहीं। यहाँ चुनाव करना होता है, इसी चुनाव प्रक्रिया में मूल्यों का निर्माण होता है। यहाँ एक प्रश्न सामने आता है, क्या मनुष्य द्वारा चुनी गई सभी इच्छाएं इष्ट हैं? मनुष्य हमेशा अपनी इच्छाओं, विचारों, व्यवहारों का मूल्यांकन करता रहता है, क्या अच्छा है क्या खराब। यही विचार और आदर्श मनुष्य के जीवन को एक स्वरूप प्रदान करते हैं, उसे उद्देश्य पूर्ण बनाते हैं। इसी कारण अमीर, गरीब, योगी, भोगी आदि समाज में निर्मित होते हैं। सीबी गुड के अनुसार मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगभग सभी विचार मूल्यों के अभीष्ट चरित्र को स्वीकार करते हैं। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसमें मूल्य की महत्ता, उपयोगिता, वांछनीयता और गुणों जिन पर ये निर्भर है के रूप में परिभाषित किया गया है। मिल्टन के अनुसार मनुष्य के जीवन मूल्य ओस की बूंदों की तरह नहीं है जो मौसम के अनुसार दिखाई दे। इनकी जड़ें प्रत्येक प्राणी में बहुत गहरी होती हैं तथा इनका वास्तविकता से गहरा संबंध है। आलपोर्ट के अनुसार मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। हिटलर के अनुसार मूल्य अवैयक्तिक, सापेक्षिक दृष्टि से निश्चर और अंतर वैयक्तिक रूप से वैध अभिष्ट है जो ज्ञात इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, परावैयक्तिक वस्तुनिष्ठता व्यवस्था की जरूरत अनुभव करता है जिसमें निश्चय यथार्थता होती है तथा जिसकी वैधता किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण के दायरे से बाहर होती है। डॉक्टर तिलक का कहना है, जिसे हम सम्मान देते हैं, जिसे चाहते हैं अथवा जिसे महत्वपूर्ण समझते हैं वही मूल्य है। वे व्यवहार के लिए प्रेरणा स्रोत है, वे मानक रूपी मानदंड हैं जिनसे मानव प्रत्यक्षीकृत क्रिया विकल्पों में से चयन करते समय प्रभावित होता है। जैक और फ्रेंकल का मत है, मूल्य आचार, सौंदर्य, कुशलता के महत्व के वे मानदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनके साथ वे जीते हैं तथा जिन्हें वे कायम रखते हैं। रथ और अन्य मूल्य तीन प्रक्रियाओं पर आधारित है, चुनना, महत्व देना, क्रिया करना। अनेक विचार विमर्श और सोच समझ के बाद मनुष्य किसी विकल्प को चुनता है। वह अपने चुनाव को महत्व देता है, प्रसन्न होता है, उसे सम्मान देता है। अपने चयन के आधार पर वह कार्य करता है। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के परिणामों को ही मूल्य कहते हैं। जेम्स पी शेवर और विलियम स्टॉर्म के अनुसार मूल्य महत्व के बारे में निर्णय के मानदंड तथा नियम हैं। वे मानदंड हैं जिनसे हम चीजों, लोगों, वस्तुओं, विचारों, क्रियाओं तथा परिस्थितियों के अच्छा, महत्वपूर्ण और वांछनीय होने अथवा खराब, महत्वहीन और तिरस्करणीय होने के बारे में निर्णय करते हैं। रॉकी के अनुसार सभी विश्वासों की तरह मूल्यों के भी संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यावहारिक अवयव होते हैं। मूल्य वांछनीय के बारे में एक संज्ञान जो वांछनीय की संकल्पना के तुल्य है। एक मूल्य इस रूप में अनुभवात्मक होते हैं कि इसके बारे में भावनात्मक रूप से पक्ष या विरोध के पक्षधर अथवा विपक्षी होता है तथा इसका सकारात्मक प्रदर्शन करने वालों का अनुमोदन और निषेधात्मक स्वरूप का प्रदर्शन करने वालों का या को अस्वीकार कर सकता है। तीन मूल्यों का व्यावहारिक एक अवयव एक हस्तक्षेपकारी चर है जो सक्रिय होने पर क्रिया उत्पन्न करता है। प्रोफेसर अर्बन का कहना है, मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करे तथा उसकी जाति के संरक्षण में सहायक हो। केवल वही साध्य और मूल्यवान है जो आत्मा का विकास और आत्म साक्षात्कार करावे। मूल्य वह सत्य है जिसके लिए आदमी बड़ा से बड़ा त्याग करते हुए जीता है। ईसा मसीह, सुकरात और गांधी को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने मूल्यों की रक्षा के लिए प्राण गंवाए। मूल्य आचरण संहिता है या अच्छे गुण हैं जिसको व्यवहार में लाकर मनुष्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, जीवन की पद्धति को बनाता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मूल्य आदमी के भीतर जागती ऐसी शक्ति है जो उसे कर्म करने को प्रेरणा देती है तथा उसके आचरण को निश्चित करके उस पर शासन करता है। आदमी अपने आदर्शों और मूल्यों से विचलित न हो इसकी पहरेदारी करता है। मूल्य समय के साथ बदलते रहते हैं। हर क्षेत्र में जो आदर्श या मूल्य थे वे आज नहीं हैं। मूल्यों की प्रकृति। मूल्यों की प्रकृति के विषय में तीन मत हैं, आत्मनिष्ठ मत, वस्तुनिष्ठ मत, अपेक्षकीय मत। आत्मनिष्ठ मत, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में उसकी इच्छा, रुचि, पसंद, संतोष आदि कारकों पर मूल्य निर्भर होते हैं। इन्हीं कारकों से मूल्यों का विकास होता है। ये व्यक्ति के अनुभवों से संबंधित होते हैं। दो, वस्तुनिष्ठ मत। मूल्य व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वे व्यक्ति के भीतर नहीं होते, मूल्यों में वस्तुनिष्ठता होती है। तीन, अपेक्षकीय मत। मूल्य प्रदान करने वाले व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच एक संबंध होता है। मूल्य कुछ भावना और कुछ तर्क है। नियामक और संरचनात्मक नियम के मिलन स्थल और मिलन बिंदु है मूल्य। मूल्य संकट अथवा असमंजस परिस्थितियों में निर्णय लेते समय छह अवस्थाएं सामने आती हैं। यहाँ कोहल वर्ग के मूल्य निर्माण मोरल जजमेंट को समझना आवश्यक है। कोहल वर्ग का मूल्य निर्णय। कुछ असमंजस परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण के लिए कोहल वर्ग ने अपने अध्ययनों में अनेक परिस्थितियों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। ये ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें मनुष्य निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में होता है कि उसके निर्णय नैतिक हैं या नहीं। उन्होंने इसके लिए अनेक परिस्थितियों को अपने मोरल डायलेमा में रखा। जैसे उनके हेंट डायलेमा में अनेक समस्याएं इस प्रकार थी। एक आदमी को अपनी पत्नी का जीवन बचाने के लिए कैंसर का इलाज करने वाली दवा चुरानी चाहिए या नहीं, किसी भी प्रयास से, जबकि वह दवा नहीं मिल सकती थी। दो, युद्ध में चुनौती का सामना करने वाले रोगी सैनिकों की सुखमय मृत्यु के लिए एक चिकित्सक की क्या भूमिका होगी। एक पूर्व पारस्परिक स्तर। इस स्तर पर नैतिक मूल्यों की उत्पत्ति बाहरी भौतिक वस्तुओं और घटनाओं से होती है। ऐसा 9 वर्ष तक के बच्चों में होता है। मूर्त वैयक्तिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य इसकी विशेषता है। क, प्रथम अवस्था। इस अवस्था में बालक अंक अहम केंद्रित होकर विचार करता है। बालक इस अवस्था में उसी बात को सत्य समझता है जो शक्तिशाली लोग कहते हैं। दंड से बचने के लिए आज्ञा पर पालन पर आधारित आचरण ही नैतिक आचरण है। इसे आज्ञा पालन तथा दंड अभिव्यक्ति कहते हैं। दूसरी अवस्था, बालक अपनी और दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। समानता के साथ चीजों का लेन देन करता है। सुख देने वाले कार्यों को अच्छा और दुखद परिणाम देने वाले कार्यों को बुरा मानता है। दो, पारस्परिक स्तर। इस स्तर पर बालक के निर्णय परिणामों के स्थान पर समूह के मानकों और उसकी अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। वह उस कार्य को करना पसंद करता है जो समूह, परिवार, समाज, सही राष्ट्र सही समझता है। वह समूह की आज्ञाओं का सम्मान करता है। यह 9 से 15 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने छोटे समूह, परिवार, स्कूल, अपनी अवस्था के बच्चों पर अधिक ध्यान देता है। दूसरों को प्रसन्न करने वाले, सहायता करने वाले व्यवहारों को वह अच्छा मानता है। बहुमत द्वारा निर्धारित व्यवहार अच्छे माने जाते हैं। इसे वैयक्तिक सामंजस्य अभिविन्यास कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार कानूनी नियमानुसार एक व्यवस्था के लिए होता है। जो व्यवहार व्यक्ति के लिए उचित हो, लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, सामाजिक व्यवस्था को सही माना जाता है। बड़े समाज पर बालक अपना ध्यान केंद्रित रखता है। उससे कानून और व्यवस्था अभिविन्यास शीर्षक दिया गया है। तीन, उत्तर पारस्परिक स्वायत्त शासी या सैद्धांतिक स्तर। इस स्तर पर व्यक्ति सार्वभौमिक नियमों और अपने अंतःकरण के आंतरिक निर्णयों के आधार पर मूल्य निर्णय निश्चित करता है। सामाजिक और कानूनी परंपराओं को स्वीकार करता है। 20 वर्ष के बाद कम युवक इस स्तर पर पहुंच पाते हैं। इस अवस्था में बालक या युवक पूरे समाज के हित के लिए दूसरों के अधिकारों और इच्छाओं का आदर करता है। ये नियम अमूर्त होते हैं। ये न्याय, आपसी मानव अधिकारों की समानता और व्यक्तिगत रूप से मानव जाति के महत्व के प्रति आदर के सार्वभौमिक नियम होते हैं। इन्हीं नीतिपरक नियमों का बालक अनुसरण करता है। मूल्यों का निर्धारण, मूल्य निर्धारण के सिद्धांत। दार्शनिकों के मतानुसार मूल्य निर्धारण के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनेक दर्शन हैं अथवा उनके अनुसार मूल्य निर्धारण के अनेक सिद्धांत हैं। इस सिद्धांतों को समझ लेना आवश्यक है। एक, मूल्य निर्धारण का प्रकृतिवादी सिद्धांत, सुखवाद। सुखवादी दार्शनिक का कहना है कि जो वस्तु हमारी इच्छा को संतुष्ट करके हमें सुख देती है वही मूल्यवान है। दो, आदर्शवादी पूर्णता का सिद्धांत। इन्होंने पूर्णता के सिद्धांत में आध्यात्मिक मूल्यों को स्थान दिया है। आदर्शवादियों ने अस्तित्व के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। इनका कहना है कि मूल्य का अस्तित्व स्वयं मूल्य पर निर्भर है, वह सापेक्ष नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं मूल्य है, इसे उच्चतम जीवन मूल्य माना गया है, यह सार्वभौमिक और चिंतन है। तीन, उपयोगितावादी सिद्धांत। यह प्रयोजनवादियों द्वारा निर्मित है। इसके अनुसार जो वस्तु स्थिति आदर्श और व्यक्ति उपयोगी है वह मूल्यवान है। चार, व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामुदायिक मूल्य आते हैं। पांच, प्रयोगवादी सिद्धांत। इसमें वे मूल्य आते हैं जिनका उपयोग वर्तमान, भविष्य और सभी परिस्थितियों में किया जा सके, उदाहरणार्थ धार्मिक मूल्य। छह, अस्तित्ववाद। यह वाद मूल्य के सांवेगिक सिद्धांत को महत्व देता है, जिसके अनुसार मूल्य निर्धारण में मनुष्य या समाज की सांवेगिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। सात, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुसार दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा दूसरों से चाहते हो। मनुष्य के व्यवहार को सार्वभौमिक बनाने की एक विधि यह भी है कि इमैनुअल कांट का कहना है कि कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जो सूत्र रूप में प्रमाणित बनकर मनुष्यों के आचार और व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। आठ, अहम केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आदमी के सभी कार्यों का उद्देश्य आत्म तुष्टि या आत्मा तोष होता है। नौ, उपादेयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे कार्य और व्यवहार ऐसे हो जिससे अधिक से अधिक लोगों का अधिकाधिक कल्याण हो। सही मूल्य इसी को कहा जा सकता है। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। हॉर्मिन और साइमन का कहना है कि जब तक कोई बात सात मानदंडों पर खरी नहीं उतरती तब तक उसे मूल्य नहीं कह सकते। यही मानदंड मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। स्वतंत्र चयन, विकल्पों में से चयन, विकल्पों के परिणामों के संबंध में विचार के बाद चयन, महत्व देना, दृढ़ता के साथ स्वीकार करना, चयन की क्रियान्विति, पुनरावृत्ति, इन शीर्षकों को इस प्रकार समझ सकते हैं। एक, स्वतंत्र चयन। मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित करने वाले मूल्य उसके स्वतंत्र चयन के परिणाम के अनुसार निश्चित होने चाहिए। दो, विकल्पों में से चयन। मूल्य तभी बनते या निर्मित होते हैं जब मनुष्य समक्ष कई विकल्प होते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह इनमें से किसी एक को चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तीन, विकल्पों के परिणामों के संबंध में विचार करने के बाद चयन। हम आवेग में आकर अक्सर बिना सोचे और समझे मूल्यों को चुन लेते हैं। यह चयन अविवेकपूर्ण है। किसी बात पर विवेकपूर्ण विचार करना आवश्यक है, तभी हम किसी सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मूल्यों के चयन पर पहले विचार विमर्श करना आवश्यक होता है। हमें हर विकल्प पर उसके परिणाम पर खूब अच्छी तरह विचार करने के बाद ही मूल्य का चयन करना चाहिए। चार, महत्व देना। किसी बात को महत्व देने में हमें प्रसन्नता होती है, हमें सुख मिलता है, हम उसके महत्व को समझते हैं, उससे लगाव रखते हैं और रखने लगते हैं, और जिस मूल्य को हम महत्व देते हैं उसका सम्मान करते हैं। ऐसे मूल्यों के अनुसार आचरण करने में प्रसन्नता होती है। पांच, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना। हम जिन मूल्यों का चयन कर लेते हैं तो उसे दूसरों के सामने रखने में संकोच नहीं होता, गर्व ही होता है। यदि दूसरों के सामने चयनित मूल्य को रखने में हमें शर्म होती है तो हमारा चयन मूल्यों का द्योतक नहीं हो सकता। मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है कि अपने चुने हुए मूल्यों को दृढ़ता के साथ सबके सामने रख सके, साथ ही उन्हीं मूल्यों की रक्षा में जीना पसंद करें। 6 चयन की क्रियान्विति। मूल्यों से ही जीवन प्रभावित होता है। हमारे व्यवहारों में ये मूल्य दिखाई देते हैं। उन लोगों उन समूहों को हमारा लगाव अधिक होता है जो हमारे मूल्यों को मानते हैं और उसका पोषण करते हैं। पुनरावृत्ति। मूल्य नष्ट नहीं होते, ये अस्थाई होते हैं, ये जीवन का एक प्रतिमान बनाते हैं। मूल्य चयनित हो जाने पर विभिन्न परिस्थितियों में और समय समय पर हमारे व्यवहारों में दिखाई देते हैं। मूल्य जीवन का नक्शा बनाते हैं जिस पर हम सब जीवन भर चलते हैं। मूल्यों के लक्षण और विशेषताएं। वस्तुओं के महत्व के संबंध में मूल्य विचार हैं, मूल्य प्रत्यय हैं, भावनाएं हैं, ये सांवेगिक वचनबद्धता हैं। जिस चीज को हम पसंद करते हैं हमें उसकी चिंता होती है। मूल्यों का अस्तित्व मन में होता है। तर्कहीन मूल्य व्यर्थ हैं, भावना बिना वे कमजोर हैं। मूल्यों में इच्छाएं और भाव होते हैं। वस्तुओं के महत्व की जांच के लिए उन्हें मानदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूल्य जीवन के अंश हैं, जीवन की जटिल परिस्थितियों में कार्यशील होते हैं। इनमें अच्छे खराब, सत्य असत्य, सही गलत की दशाएं होती है। ये अहम संरक्षक हैं, ये अनुभवों से संबंधित होते हैं। अनुभव ही इन्हें स्वरूप देते हैं और जांच करते हैं। ये यदा कदा विशुद्ध और अमूर्त रूप से कार्य करते हैं। इनका परिणामात्मक और गुणात्मक आकलन संभव है। सभी मूल्य सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। महत्व। सभी मूल्य सभी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। किसी के लिए कोई मूल्य महत्वपूर्ण है, किसी के लिए कोई नहीं। फिर भी मूल्यों का समर्थन सभी करते हैं। जरूरतमंद की सहायता करना सभी अच्छा समझते हैं। हत्या और अनाचार सबको बुरा लगता है। कुछ मूल्यों को अन्य मूल्यों से लोग अधिक महत्व देते हैं। मूल्य जीवन के लिए आवश्यक हैं। मूल्य निर्णयों से एक व्यक्ति के वरीयता प्राप्त विचारों और कार्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। मूल्यों के संबंध में असहमति होने पर एक दूसरे की मूल्य प्राथमिकताओं से सहमति नहीं बनती। मनुष्य का जीवन मूल्य आवेशित है। मूल्य का अस्तित्व स्व की संरचना से मिलता जुलता है। मूल्य तंत्र और मूल्य द्वंद। जब मनुष्य किसी मूल्य को सीख लेता है तब वह मूल्य एक संगठित मूल्य तंत्र में समाकलित हो जाता है। इस मूल्य तंत्र में मनुष्य प्रत्येक मूल्य अन्य मूल्यों के संदर्भ में प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करते हुए देखता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तित तब होता है जब उसकी मूल्य प्राथमिकताओं के क्रम में परिवर्तन होता है। इस पूरे मूल्य तंत्र में पर्याप्त स्थायित्व होता है तथा जिससे किसी विशिष्ट समाज व संस्कृति में सामाजिकृत अनोखे व्यक्तित्व की समानता व निरंतरता का पता चलता है। वैयक्तिक सांस्कृतिक व सामाजिक अनुभवों में भिन्नता के कारण मूल्य तंत्रों में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। इन वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए व्यक्ति विशेष के साथ पूर्ण अंश तादात्म्यकरण धार्मिक आस्था लालन पालन शैली संस्थागत सांस्कृतिक मूल्यों का अभ्यंतरीकरण बौद्धिक विकास समाज की मांग आदि उत्तरदायी है। सब मनुष्यों के मूल्य तंत्र एक समान नहीं होते। किसी के दो या दो से अधिक मूल्यों में विरोध हो संभव है। वह या यह किसे स्थान दे, यद्यपि विरोध पैदा होता है जो व्यक्ति को द्वंद्व की स्थिति में डाल देता है। ऐसे द्वंद्वों का सामना अनेक बार करना होता है। इन द्वंद्वों का सामना करना कठिन होता है। मूल्य द्वंद्व जीवन की वास्तविकता है। दो विरोधी लेकिन प्रबल इच्छाओं के कारण व्यक्ति को दो व्यवहार करने के लिए बाध्य होते हुए भी देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे दबाव की स्थिति में जहाँ तक हो मुक्ति पा लेनी चाहिए। जब हमारे सामने दो मूल्य होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि किसको माने। वही द्वंद्व की दशा उपस्थित होती है। इसी को मूल्य द्वंद्व कहते हैं।